मुंबई में रुद्री और मोक्ष को पता चल चुका था कि माया ने रुद्राक्ष और ईशानी को अलग कर दिया है। इस बारे में पता चलते ही मोक्ष ने यही डिसाइड किया कि वो माया से ईशानी को प्रोटेक्ट करेगा और वो उसके साथ कभी नहीं होने देगा जो किसी टाइम में रुद्री के साथ हुआ था। रुद्री से बात करने के बाद मोक्ष अपने रूम में आया और उसने उसी वक्त रुद्राक्ष को कॉल किया। रुद्राक्ष देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। उसने मोक्ष का कॉल देखा तो उसने रिसीव नहीं किया। मोक्ष ने उसे कॉल करना जारी रखा जब तक कि रुद्राक्ष ने कॉल नहीं उठाया। आखिर में इरिटेट होकर रुद्राक्ष को कॉल रिसीव करना ही पड़ा। उसने कॉल पिक करके बोरियत भरे लहजे में कहा, ना तो इंडिया में और ना ही लंदन में इस वक्त ये समय है कि तुम किसी को कॉल करो। मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं की और ना ही मैं सो रहा हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है समय जो भी रहा हो। नींद नहीं आ रही ना आपको उसके बिना, मोक्ष ने सीधे सीधे कहा, जिस पर एक पल के लिए रुद्राक्ष चौंक गया। रुद्राक्ष ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, मैंने प्रथा को मना किया है कि वो यहाँ की बातें मॉम को मत बताएं, फिर भी सुनती नहीं है। डोंट वरी, तुम्हारी फ्रेंड के साथ हम कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं जो तुम आधी रात को कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने आपको परेशान नहीं किया, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसके बिना नींद नहीं आ रही, मोक्ष ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, जिसका रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई थी। फिर मोक्ष थोड़ा सीरियस टोन में बोला, भाई आपने वो कहावत सुनी है ना कि कमल के आसपास कीचड़ फैला हुआ रहता है फिर भी उसकी खुशबू और खूबसूरती में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन लोगों के साथ रहकर भी कभी उन जैसे नहीं बन पाओगे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि आपको मेरी मॉम ने पैदा किया है। पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता है। ऑर्फिनेज में बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें पैदा करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी परवरिश कोई और करता है, रुद्राक्ष कड़वाहट से बोला। कई बार वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको खुद अपने बच्चों से जुदा होना पड़ता है। मॉम आपसे अलग नहीं होना चाहती थी, खुराना फैमिली ने ज़बरदस्ती ऐसा किया, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप मॉम का तभी समझ पाओगे जब कभी आपकी लाइफ में ऐसा दिन आएगा और आप चाहकर भी अपने बच्चों के पास नहीं रह पाओगे। पर आई विश कि आपकी और ईशानी की लाइफ में वो दिन कभी ना आए, मोक्ष ने मायूसी से कहा। रुद्री की तकलीफ उससे बेहतर कौन समझ सकता था, आखिर बचपन से ही वो उसके साथ रहा था और कम उम्र में ही समझदार हो गया था। रुद्राक्ष ने बात को टालने के लिए टॉपिक बदलते हुए कहा, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, मॉम का दुख, मॉम की मजबूरी, कभी अपनी मॉम के बारे में सोचा है? उन्हें कैसा फील होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम क्या काम करते हो? खुद तो गलत दुनिया में फंसे हुए हो, ऊपर से ईशानी को भी, रुद्राक्ष बोलते हुए रुक गया। रुद्राक्ष के रुकते ही मोक्ष छट से बोला, अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। आज उन्हें कर रहा हूँ, कल को अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करने की बारी आई तो उसके लिए भी करूंगा। वो कहते हैं ना, भाभी भी माँ समान होती है। फिर यहाँ तो मेरी भाभी मेरी दोस्त है, उस फैमिली से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसके बाद आपको खुद को अफसोस हो, मोक्ष ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। एक तो पहले ही रुद्राक्ष को नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से मोक्ष की बातों से उसका दिल और बेचैन हो गया। रुद्राक्ष ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। पूरी होराना फैमिली में कोई नहीं जाग रहा था सिवाय रुद्राक्ष के। अचानक रुद्राक्ष अपनी चेयर से उठा और लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा, मुझे उसे देखना है। रुद्राक्ष जल्दी से अपने रूम में पहुंचा जो सेकेंड फ्लोर पर बना हुआ था। खुराना मेंशन में बने हुए कमरा अंदर से अनलॉक हो सकते थे, तो उसके साथ ही बाहर लगे सिक्योरिटी पासवर्ड से भी उन्हें अनलॉक किया जा सकता था। रुद्राक्ष ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। उसने देखा ईशानी गहरी नींद में सोई हुई थी। कमरे में एंटर करते कि रुद्राक्ष ने डिम लाइट को जलाया और फिर धीरे से ईशानी के पास आया। रुद्राक्ष हल्के से ईशानी के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस किया। इस वक्त रुद्राक्ष के चेहरे पर सुकून के भाव थे जो ईशानी को होने के बाद थे। पहला प्यार हो तुम मेरा और शायद आखिरी भी। हमेशा हम गलत मौके और हालात में मिले कि कभी ठीक से कुछ क्लियर ही नहीं पाया। आई रियली लव यू ईशानी, और जिसका मुझे डर था वही हो गया। तुमसे शादी नहीं करता तो दादी तुम्हें, बोलते हुए रुद्राक्ष रुक गया। वो बिल्कुल धीमी आवाज में बात कर रहा था। अचानक ही रुद्राक्ष के सामने पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जब वो लंदन से मुंबई आए थे। ये केस हियरिंग से पहले वाला दिन था। इस वक्त पूरी खुराना फैमिली आलिया के घर पर थी। आलिया के अरेस्ट हो जाने के बाद लॉयर्स की एक लंबी चौड़ी टीम वहां बैठी हुई थी और इस बारे में बात कर रही थी। लॉयर से बात हो जाने के बाद विक्रांत और माया अकेले थे, जबकि रुद्राक्ष कुछ पल के लिए बाहर गया था। वो अंदर वापस आया तो माया की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक गए। माया ने विक्रांत से गुस्से में कहा, सुना है उस लड़की की बहन ने केस रीओपन करवाया है, उस दो कौड़ी की लड़की की इतनी मजाल कि वो खुराना फैमिली की बेटी पर उंगली उठा रही है। आज हियरिंग निपट जाने दो, फिर वो लड़की मुझे अपने आसपास तो क्या इस दुनिया में भी नहीं दिखनी चाहिए।
मैं भी यही सोच रहा था, पर हम अभी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हाथों हाथ मारा तो सीधा सीधा शक आलिया पर जाएगा, पर चिंता मत कीजिए, कल हियरिंग के बाद उसे कोर्ट के बाहर से ही उठा लिया जाएगा। हम उसकी मौत एक्सीडेंटल दिखा देंगे, विक्रांत ने जवाब दिया। माया कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रही, फिर उसने कुछ सोचते हुए से कहा, नहीं, मारना नहीं है। उसने हमारी इज्जत का तमाशा लगाया है तो उसकी इज्जत का तमाशा भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे उसकी बहन का लगा था। तुम क्या काम करते हो हमें अच्छे से पता है। उस लड़की को कहाँ किसके पास पहुँचना है ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग में आज तक नहीं गया। उसे बेचना सही नहीं होगा, विक्रांत ने हैरानी से कहा, लेकिन माया के चेहरे पर अफसोस के बिल्कुल भाव नहीं थे, मानो उसने फैसला कर लिया हो। उस लड़की की जितनी भी कीमत उठे वो अनाथ आश्रम में दान कर देना, तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हें अफसोस भी नहीं होगा। मुझे उस लड़की को बुरे से बुरे हालातों में देखना है। माया ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने लगी। उसे आता देखकर रुद्राक्ष दीवार के चिपक गया। रुद्राक्ष नहीं जानता था कि ईशानी की छोटी बहन ईशानी ही है वो लड़की जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, तो उसके अगले ही दिन नफरत भी। माया और विक्रांत की प्लानिंग सुनकर रुद्राक्ष ने गुस्से में मुठ्ठियां बांध ली। उसने आंखें बंद की और अपने मन में कहा, हाँ तुमने गलती की है, तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब होना, नहीं, तुम ये भी डिजर्व नहीं करती हो। तुम तो क्या कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती है। रुद्राक्ष ने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया और ईशानी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। कुछ ही देर में विकास खन्ना के ऑफिस के आगे था। ईशानी को वहां देखकर वो हैरान था। इस वक्त उसे ईशानी को कुछ भी करके बचाना था और उसका एक ही रास्ता था कि खुराना फैमिली की इज्जत उछालने वाली लड़की को उसी फैमिली की इज्जत बनाना। वो सब बातें याद आते ही रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थी। उसने फिर ईशानी की तरफ देखा जो सोते हुए कुछ ज्यादा ही मासूम लग रही थी।
दिल चाह रहा है तुम्हें अपनी बाहों में लूं और तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मजबूरी देखो, अपने प्यार का इजहार करना तो दूर, मैं तुम्हें जी भर के देख भी नहीं सकता, रुद्राक्ष ने धीरे से कहा। उसने झुककर ईशानी के फॉरहेड पर हल्का सा किस किया और उसे कुछ पल वैसे ही देखने के बाद वहां से चला गया। ईशानी इतनी गहरी नींद में थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि रुद्राक्ष उसके पास आया था और वापस भी चला गया। वहीं रुद्राक्ष अपने फ्लोर पर लौट चुका था। आते ही रुद्राक्ष अपने केबिन में गया और उसने अपनी सेफ को खोला, जो कि उसी के फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और सेट किए हुए पासवर्ड से खुलती थी। सेफ के खुलते ही वहां बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट, पैसों और एसेट्स के अलावा एक और चीज रखी हुई थी, और वो थी एक डायरी।